فراغ آیت 41 سے 52، اللہ کا ذکر بکثرت کرو، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، آپ کے رب کی پکار آپ کے نام، ایمان والوں کے نام ان کے رب کا پیغام کیا؟ مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، اور وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور تمہارے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے، جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ان خوبیوں کو اور ان خوشخبریوں کو پانے کے قابل ہو جائیں۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کفار اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو تکلیفیں ان کی طرف سے پہنچیں اس کا خیال بھی نہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ آج سے لوگوں کی باتوں سے خود کو بے نیاز کرنا سیکھیے۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کہا لوگ تو بالآخر یہی کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی اچھی عورت تھی، دیٹس اٹ۔ آپ کے میرے بارے میں وہ لوگ جو زندگی میں کبھی بات بھی نہ کریں اینڈ پہ یہی کہیں گے ویسے اچھی ہی تھی، چلے اللہ معاف کرے، چلو بڑی تھی۔ لوگ اپنی ساسوں کے لیے کہتے ہیں اللہ ساس کو معاف کرے، ویسے غصے کی تیز تھی، زبان کی بڑی تیز تھی، اینڈ پہ تو پھر لوگ گیو اپ کر ہی دیتے ہیں۔ ساری زندگی کے ناراض رشتے دار بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی موت پہ آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہائے بھائی کو اتنے سال سے ملی نہیں تھی۔ تو چار چھ دن کی زندگی کے لیے آخرت کو خراب نہیں کرنا، اور پھر آپ کے نام ایک اور پکار، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، یعنی نکاح ہو اور ابھی رخصتی نہ ہو اور اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر اس عورت یا اس بچی پہ عدت نہیں ہے، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو، پھر بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ یعنی دیکھیے کہ دو ضرور، احسان کر کے چھوڑو، ہم تو باتوں کا احسان کرتے ہیں نا، ہم تو اس عورت کو ایسا بدنام کریں گے کہ اس کا آگے کہیں رشتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو صحیح کر دے۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموؤں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت بھی جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے، یہ صورت میں کہ خود نبی بھی ان سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ یعنی یہ خصائص نبی تھی کہ جن کو زیادہ اللہ نے عزت دی ہوتی ہے، اگر ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ مراعات بھی ملنی چاہیے، ان کو زیادہ سہولتیں بھی ملنی چاہیے، اور اللہ نے اپنے نبی کو وہ دی۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر اور ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، ان میں سے تو جسے چاہے، یعنی ان ساروں میں سے جنہیں تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، یعنی دونوں چوائسز موجود ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو اللہ نے دے دیا اختیار، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس اختیار کو بھی استعمال نہ کیا، اور جو اللہ نے چاہا اور جو عزیمت کی رات تھی اسی کو اختیار کیا۔ اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو بھی تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے کئی سوال آپ کے ذہنوں میں ابھر رہے ہوں گے، تو بس یہاں یہ کہیے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے آپ کو سیرت کو بھی سمجھنا ہے اور ان آیتوں کی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس میں اگر ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے نا تو فوراً دعا کر دیں کہ اللہ مجھے قرآن کے لیے اور وقت لگانے والا بنا دیں، اتنے میں تو اتنا ہی ملتا ہے۔ थोड़े पैसों में थोड़ा ही मिलता है ना, तो थोड़े वक्त में थोड़ा ही मिलेगा। लेकिन इसमें किसी आयत के बारे में कोई मिसकॉन्सेप्शन का शिकार ना हो, क्योंकि ये वो आयतें हैं कि जिसको सही ना समझे ना तो वो अधूरे सच बन जाती हैं, और अधूरे सच झूठ से भी ज्यादा नुकसान देते हैं। आज वेस्ट में नबी के खिलाफ प्रोपेगंडा इसी किस्म की बातों पर है। हाँ, क्या फरमाया आगे आयत 52, इसके बाद और औरतें आपके लिए हलाल नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि इनके बदले और औरतों से निकाह करें, अगरचे इनकी सूरत अच्छी भी लगती हो, मगर जो तेरी ममलूका हो, और अल्लाह ताला हर चीज का पूरा निगेबान है। यानी अल्लाह के नबी की बीवियों को जब इख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो नबी को चूज कर लें, नहीं तो दुनिया का मालो मता ले लें, ये है असल में अमल की बात। सबने आपको चूज किया, तो जब उन्होंने आपको चूज किया तो अल्लाह ने नबी को कहा कि अब इसके बाद आप कोई और शादी नहीं करेंगे। और नबी की शादियां, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट एंड वॉर्स ऑफ द प्रॉफिट आज के वेस्टर्न माशरे का पसंदीदा शुगल है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने कभी एतराज ना किया उन मसलों पर, उनके माँ बाप ने ना एतराज किया जिस पे आज के दुश्मन एतराज कर रहे हैं। तो हमें इन सारी बातों पे यही कहना है कि हम अपने नबी के बारे में मजीद जानेंगे, मजीद उनके किरदार को समझेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम तुम्हें इसका जवाब भी देंगे। ईमान से मतलब चार आयतें हैं इस रुकू में। 41 सूरत अहज़ाब, बंदा है मोमिन दिल की धड़कनों से तस्बीह का काम लेता है। कैसे? उस्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आप देख रहे हैं कि इस सूरत में जिक्र का बहुत तज़किरा है। फिर अहज़ाब 43, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, रातों को अल्लाह पुकारता है आओ मेरे पास, मेरे सामने झुको, अपने दुख बताओ, तकलीफें बताओ, लेकिन हम अल्लाह के सिवा औरों को अपने दुख सुनाते रहते हैं। फिर अहज़ाब 47 का मैसेज क्या है? मोमिन को जो भी मिलता है वो अल्लाह के फजल से मिलता है। हम में से किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि उससे जन्नत खरीद सके। देखिए, दुनिया में लोगों के पास पैसे नहीं होते, बैंकों से लोन लेके घर ले लेते हैं और फिर उसको सारी उम्र भुगतते रहते हैं। अल्लाह सुबहान तआला आपको नेकी की तौफीक दे रहे हैं, आप उस पर लब्बैक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी गनीमत है। इसके बाद बाकी जो जन्नत के इंस्टॉलमेंट है ना, वो अल्लाह ने अपनी रहमत से देनी है। डाउन पेमेंट जितनी नेकियां कर जाए, ये आपकी मेरी सारी जिंदगी कोशिशें, सिर्फ डाउन पेमेंट के बराबर पैसे जमा करके हम जन्नत में बुकिंग करा लेंगे ना, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला खुद ही दे देगा। फिर सूरत अल अहज़ाब की आयत 49 में क्या है? तलाक की हर सूरत में बीवी को इज्जत और एहतराम से रुख्सत करना है। यानी घर टूट गया है, दीन तो ना तोड़ो, इस्लाम तो ना छोड़ो, फेथ इन एक्शन, अल्लाह ताला को बकसरत याद करना है, दावते हक में आने वाली मुसीबतों पर अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है। रुख्सती से पहले तलाक की सूरत में औरत के लिए इद्दत नहीं है। कितनी बारीकी से इस्लाम हमें ये अहकाम सिखाता है। एक दफा दिल पे पत्थर रख लें, या कह लीजिए कि अल्लाह से दुआ करके कुरान सीख जाए, आपको ये जो सबीलुल जन्नत कोर्स दिया जाता है ना, इसमें आपको ना तो आलिमा बनाया जाता है, ना मुफ्तिया बनाया जाता है, ना शेखा बनाया जाता है, इसमें आपको एक अच्छी मोमिना, वो चीजें जो एक बीवी एक औरत होने के नाते शौहर के साथ कैसा मामला हो, बच्चों को कैसे रेस करें, बहन कैसी हो, माशरे में किरदार है, यानी आपको आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस और आपके रोल्स समझाए जाते हैं, और आपकी फर्ज नमाजें ठीक हो जाती हैं, रोजे, यानी जो चीजें आपकी अपनी डे टू डे लाइफ है, इसको अगर कोई पूछता है कि आप क्या करेंगे, कौन सी किताबें पढ़ाएंगे, सिर्फ कुरान और हदीस, दैट्स इट। किसी इंसान की लिखी कोई किताब नहीं हम पढ़ते, इल्ला ये कि मैनर्स की कुछ बुक्स हैं, दरसो तदरीस के आदाब है, जिसमें स्टूडेंट ऑफ नॉलेज बनने की बातें हैं, और जो आपको बाकी चीजें पढ़ाते हैं, तफहीमुल सुन्ना, सुन्नत की रोशनी में हदीसों का मजमुआ जो किसी और का लिखा हुआ नहीं है, हदीसें जमा करके कि ये तहारत की किताब है, ये रोजे के मसाइल, ये नमाज के दर्स, किसी फिक में आपको इस पूरे सबीलुल जन्नत में नहीं लाना जाता, क्योंकि आप जिस फिक में आप रहिए, आपका जिस पे शरह सदर है, आपका जो दिल करता है, हमें जो समझ आती है कुरान सुन्नत की आपको वो देते हैं, उसके बाद आपका अपना दिल गवाही देता है कि मैंने क्या करना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इल्म के रास्ते आसान कर दे। आगे रुकू नंबर 7, 53 से 58, दुरुदो सलाम की तरगीब। अल्लाह हमें अपने नबी पे दुरूद पढ़ने वाला और सलाम भेजने वाला बना दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। आपके नाम आपके रब का एक और पैगाम आ गया, ऐ ईमान वालों, जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए तुम नबी के घरों में ना जाया करो, खाने के लिए भी इजाजत के बाद जाओ, ये नहीं कि पहले से जाकर बैठ गए और खाने के पकने का इंतजार करते रहे, بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ، اور جب کھا چکو تو وہاں سے نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تو لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں شرع میں شرم نہیں۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے، اور نہ تمہیں جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت میں آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ آیت کا نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، ازواج مطہرات کو ہم امہات المومنین کیوں کہتے ہیں؟ امت کی مائیں، اس آیت کی وجہ سے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم کسی چیز کو ظاہر کر دو یا چھپا کر رکھو تو اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں، لونڈی اور غلام کے سامنے ہوں، اور تو اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ کتنی رشتوں کی لسٹیں کھل رہی ہیں، سورۃ نساء میں کھلی، پھر سورۃ نور میں کھلی، اب یہاں تھرڈ لسٹ آئی ہے، عورت کس کے سامنے جائے، کس کے سامنے نہیں جائے، کہاں کس حد تک زینت کا اظہار کرے۔ آپ مجھے بتائیے، اس سے زیادہ پریکٹیکلٹی اور کس کتاب میں ہوگی؟ کیونکہ کتاب نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھی تو قیل و قال ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ آپ کو ایک بار پھر پکارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آئیے ہم بھی درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہمارے نبی پر اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ 3 آیات ایمان سے متعلق، 53 احزاب گھروں میں آنے جانے کے آداب، 56 احزاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم، اور 58 احزاب کبھی کسی دیندار کے خلاف بات نہ کریں۔ مسلم مزاج نہیں ہے، اور تھوڑے لوگ ہیں دنیا میں گندگی اور غلط کام پھیلانے والے، ان کے ساتھ بات کر لیں اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے اپنی نیکیوں کو ان کو دینے کا۔ مومن کا مزاج ہمیشہ صلح اور امن جوئی کا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آیت 53 میں ایک پیغام تھا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، عورتوں سے، ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا بھی ہو تو حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے مانگو، کیونکہ حجاب دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ عمل کے نقطے کیا نکلے؟ کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں نہیں داخل ہونا، کسی کے گھر دعوت پر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد زیادہ دیر نہیں بیٹھنا کہ میزبان تنگ ہو، گھر کے باہر مرد سے پردے میں رہ کر بات کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آج ہماری دعوتوں میں کیا ہے، آج ہماری شادیوں میں کیا ہے، آج ہماری مہندیوں اور اپٹنوں میں کیا ہے؟ قرآن کی ان آیتوں کو کہاں لے جاؤں، کہاں جائیں یہ آیتیں قرآن کی؟ یہ قرآن ہے، لوگ تو کہتے اچھا حدیث کی بات ہے، نعوذ باللہ حدیث پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، غلط ہے، کیا پتہ کیا کس نے بول دیا، اس قرآن کے لیے کیا کہیں؟ تو اسی آیت پہ آ جائیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کو آپ کے میرے اوپر فرض کر دے تو چپ کر کے لے لو۔ اسی لب اگلی آیت پہ ذرا سا دل کھول کر سنتے ہیں، رکوع نمبر 8 ہے، 59 سے 68، سورت اپنے اینڈ کی طرف آ رہی ہے، پردے کا حکم۔ یا ایھا النبی کلی ازواجک و بناتک و نسائے المومنین، میں ذرا رک رک کا ترجمہ پڑھوں گی، جو بیچ میں میری خاموشی ہوگی نا وہ آپ کی سوچ بننی چاہیے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے، یعنی یہاں تک بات نبی کی تھی، بیویوں سے مراد ازواج مطہرات اور بیٹیوں سے مراد فاطمہ، رقیہ، اور اسی طرح سے امت کی ہر عورت، امت کی ہر عورت نبی کی بیٹی ہے، یہ یاد رکھیے، اتنی بھی بات کافی تھی۔ یعنی نبی کا اپنی بیویوں سے مراد ازواج مطہرات، اور صاحب زادیوں سے مراد हर ईमान वाली औरत है, मैं भी उसमें, आप भी हैं, क्योंकि मैं और आप नबी की बेटियां हैं। लेकिन मामले की संजीदगी और तबीयतों के अंदर के रुझान को देखते हुए कि लोग चूँच राम बहुत करते हैं और कह देंगे देखो देखो ये पर्दे का हुक्म तो नबी की बीवी और बेटियों के लिए था, हमारा तो तذکرہ ही नहीं। अल्लाह ने फिर आपके मर्दों को पुकारा क्या, और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शिनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सताई जाएंगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अगर अब भी ये मुनाफिक वो जिनके दिलों में बीमारी है और वो लोग जो मदीना में गलत अफवाहें उड़ाने वाले हैं बस ना आए तो हम आपको इनकी तबाही पर मुसल्लत कर देंगे, फिर तो वो चंद दिन ही आपके साथ इस शहर में रह सकेंगे। इन पर फिटकार बरसाई गई, जहां भी मिल जाएं पकड़े जाएं और खूब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। इनसे अगलों में भी अल्लाह ताला का यही दस्तूर रहा, और तो अल्लाह के दस्तूर में हरगिज रद्दो बदल नहीं पाएगा। लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, आपको क्या खबर, बहुत मुमकिन है कि कयामत बिल्कुल ही करीब हो। अल्लाह ताला ने कुफार पर लानत की है और इनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, वो कोई हामी और मददगार ना पाएंगे। उस दिन इनके चेहरे, या नोट करिए चेहरों की बात क्यों आई, उस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे, हसरत और अफसोस से कहेंगे कि काश हम अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करते, और कहेंगे हमारे रब हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की मानी, जो सब करते थे हम भी वही करते थे, एलीट्स की मानी, माशरे में बासर और असर रसूख रखने वाले लोगों की मानी, जिन्होंने हमें राह रास्त से भटका दिया, परवरदिगार तो इन्हें दुगना अजाब दे और इन पर बहुत बड़ी लानत फरमा। एक आयत ईमान से मुतल्लिक 59 और एक ही काफी है, जरा आयत पे गौर कीजिएगा। या अय्युहन नबी कुल लिअज़्वाजिका वबनातिका, बात खत्म हो गई, अब आगे मेरी आपकी बात। वह निसा इल मोमिनीन, लफ्ज निसा इल मोमिनीन पे गौर कीजिएगा, क्या करें, युदनीना दना यदनु दनु, ये लफ्ज दुनिया है ना, इसी से है, करीब करना, अलैहिन्ना अपने ऊपर, अला का लफ्ज ऊपर होता है, ई नहीं है, इलई नहीं है, टू वर्ड्स नहीं है, अपॉन है, सर के ऊपर डालने के लफ्ज के लिए अला आया है, क्या डालो, मिन जलाबीबिहिन, जिलबाब की जमा, और जिलबाब को जाकर आज अरबी डिक्शनरी में देखिएगा, चाहे किसी नॉन मुस्लिम की लिखी हुई अरबी डिक्शनरी खोल ले, जिलबाब कहते हैं ऐसी चादर जो सर पे रखी जाए तो पाँव भी झुक जाए, और अगर इसको आपके मेरे देसी कल्चर में समझना ना तो टोपी वाला बुरका जी, यानी औरत के सर से लेकर पाँव तक छुप जाए, ऐसा पर्दा औरत ने बाहर जाते हुए करना। आप समझिए आराफ में घर के अंदर औरत औरतों में क्या पहने, जैसे मैंने इस वक्त और आपने औरतों में कुछ पहनना हुआ, कुछ भी पहने, अच्छे कपड़े पहन के, रोज नया सूट पहन कर आए, अगर हैं तो पहनिए, कब पहनने हैं, क्या वो मेहंदी के थाल पकड़ने के लिए जोड़े रखे हुए, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे काम कीजिए। ये जुमला मैं अपनी हर साल की इस दौरे कुरान में बोलती हूँ, अपने उस्ताद की बात, मेल टीचर थे, किसी ने पूछा था कि उस्ताद क्या औरतें अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अच्छे खाने ये वो, तो उन्होंने कहा खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो और खूब अच्छे काम करो। मामला कहाँ बिगड़ता है जब खूब अच्छा खाते पीते हैं और काम खूब बुरे करते हैं, वो हर जोड़ा हमारे खिलाफ हुज्जत बनेगा जो लाखों में बना और हमने उसको पहन के मैं यकनुत पे अमल नहीं किया, नाफरमानिया की, यासीन किया। तो जरूरत है कि औरत औरतों में अच्छी लगे, कोई हर्ज नहीं, साफ सुथरे हो, नहा धो के आया करें, नींद नहीं आती, थकन नहीं होती, हम एक दूसरे को इज्जत दे रहे होते हैं, मेहमान के आने पे आप घर साफ करके अच्छे कपड़े पहनते हैं, गोया कि आप उसको वेलकम कर रहे हैं, बाल बिखरे हुए और गिद्दे पड़ी हुई और मेहमान आ गया, वो कहेगा इनको खुशी नहीं हुई, आप मुंह उठाकर चले जाए किसी के घर, एक अजीब सरदार मुंह फाड़, अगला कहेगा कि मैंने तो इतना इस्तेमाल किया इनको कोई खुशी नहीं, बस इतना काम है और फ्रेश लगता है बंदा। आप पहनिए, आप रोज घर में पहने, अच्छे बने। कल मियाँ बीवी के मामले में बात हुई कि आप अपने सोने के कपड़े अलग रखिए, वो लहसुन प्याज की पोटली बन के आपको बिस्तर पे जाना है, फिर कहते हैं मियाँ साहब बदल गए, वो नहीं बदल गए, आप भी कुछ बदल गई हैं, तो अच्छा पहनिए। आगे चले गए तो हम आए सूरत नूर पे, घर के मर्दों, देवर, जेठ, नंदोई, फिर नंदों के बेटे। अब हमारा कल्चर चूंकि इंडिया में और पाकिस्तान में ऐसे ना, सऊदीया में ऐसा नहीं है, वहां लड़की लड़का शादी के बाद ऐसे ही अकेले जाते हैं जैसे आप गोरों को देखते होंगे, इस्लाम ने हुक्म भी यही दिया। लेकिन चलिए हम इसको चैलेंज नहीं करते इस वक्त ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को, तो ज्वाइंट में भी रहोगे तो आने वाली लड़की का कमरा अलग, उसका घर अलग। अगर घर में देवर जेठ उनके बच्चे हैं तो उसको भाभी और उनको चच्ची के पास आने के लिए कुछ हदें, खास के आओ, अलग आओ। औरतें काम कर रही हैं घर में, अब घर में अब निकाब तो नहीं पहन सकते और अबाया भी नहीं पहन सकते, तो आप उसको एक हल्की सी जिलबाब, खुली खुली ढीली ढीली चादरें, जिसको हमारे यहाँ नमाज के दुपट्टे कहते हैं, जब कल्चर बन जाएगा ना तो फिर मर्दों को भी झिझक पड़ जाती है। एक निकाब वाली औरत किसी महफिल में आ जाए, वो 200-400 मर्दों को हाथ पांव पड़ जाते हैं, वो घबराने लगते हैं कि वो आई हुई है ना पर्दे वाली, अब हम कहाँ बैठे। एक पर्दे वाली औरत को बुलाना हो ना, दिल भी चाह रहा होता है कि इतनों को जो बुला रहे हैं तो इनको भी बुला ले, क्यों नहीं बुलाते। नहीं, फिर उनकी वजह से पर्दा। ये लफ्ज निसाइल मोमिनीन को हाईलाइट कर ले, मर्दों को जिम्मेदारी दिलाई कि तुम अपनी खवातीन के पर्दे का एहतमाम करो, बाप बेटी के पर्दे का, भाई बहन के पर्दे की, शौहर बीवी के और बेटा माँ के पर्दे का। आज मैं इतनी खूबसूरत वीडियो का क्लिप देखकर आई हूँ, 10 साल का बच्चा अपनी माँ को कलमा शहादा पढ़ा रहा है। इजिप्ट का एक BDS डॉक्टर ब्राजील की एक औरत से मिला, शादी की 20 साल पहले, बच्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बैतुल मकदस गया तो जब वो जाने लगा तो उसकी बीवी को रोक लिया उन्होंने, पूछा आर यू मुस्लिम, उसने कहा नहीं, झूठ नहीं बोला, कहा तुम नहीं जा सकती। वो बाहर खड़ी होकर रोती गई, शौहर अंदर गया, उसने कहा कि मैंने वहां जाकर दो दुआएं मांगी कि अल्लाह मुझे बेटा दे और मेरी बीवी को इस्लाम दे। अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल की, पहले बेटा हुआ, 10 साल बाद वो बेटा अपनी माँ को आज कलमा पढ़ा रहा है। तो क्यों मायूस है? मर्द जिम्मेदार है अपनी औरतों के पर्दे के। अगर कोई कहता है तो आप बुरा ना मनाए बल्कि खुश हो, क्योंकि मर्द जहां गैरत के साथ ये काम करेंगे ना, वहां औरतें भी करेंगी। औरतों का पर्दा मर्दों की गैरत का इजहार होता है। दयूस कहा गया ऐसे घराने को कि जहाँ खराबियों की खराबियां भी आ जाएं और मर्द कुछ ना कहे। अजीज मिस्र का किरदार देख लीजिए। तो याद रखिए, अब आप में से कोई मुझसे सवाल करता, अच्छा निकाब फर्ज है, और ये मैं अपना कॉन्फिडेंस आपको बता रही हूँ कि मैंने ब्लैक ही बाया पहना है, लेकिन किसी का कल सवाल आया था तो मैं हंस रही थी और मैंने कहा माशाल्लाह लोग भी आपसे वो काम करवा लेते हैं जो आप भूल भी जाएं, तो बाया काला जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि और स्पीकर्स तो कहते हैं कि आप दूसरे भी पहन लें, तो मैं आपको एक जुमला बता देती हूँ, ना काला सुन्नत फर्ज है ना ब्लैक, लेकिन ये जो हम रंग बिरंगे पहनने लग जाते हैं और वो ड्रेस का ड्रेस ही है। देखिए आप सबको बताऊं कि अगर कोई अबाया आपने इधर पहना हुआ है ना, तो युदनीन अलैहिन्न हिन्न मिन जलाबीब, कह के उसके ऊपर एक और पहने बाहर जाते हैं। वन लाइनर जवाब है, जिन कपड़ों जिस हाल हुलिये में औरत इनडोर बैठी हुई है ना, इस हुलिये में बाहर नहीं जाएगी। आप कहते हैं बड़ी चादरें ही है ना, लीलन की चादरें हैं, लॉन के दुपट्टे हैं, वो आपका इनडोर है। अब आपके भाई जो आजकल दुनिया में आम है ना, ये इनडोर ड्रेसेस हैं। आपने देखा मेरे पास अमूमन गाउन ही होता, नीचे एक ही काला बाया होता है या कोई और रंग का गाउन चेंज हो जाता है। ये मेरा ड्रेस है, मैं इसमें नहीं गई, वहां रखा हुआ। आप मुझे जाते हुए रोज ही देखते आते हैं, नहीं देखते आज रहा, और क्रिटिकली देख लीजिएगा, इसके ऊपर कुछ पहनना। तो अब आप कहते हैं निकाब फर्ज है, हिजाब फर्ज है, तो इस पे मेरे से सवाल ना करें, इस जवाब को इधर ही ले लीजिए। सबके लिए मैंने इकट्ठा जवाब लिख दिया है कि निकाब की हिकमत उसको समझ आती है जो बाकी पूरे जिस्म को मतलूबा हद तक छुपा चुका हो। दैट्स इट, स्टार्ट तो कीजिए, बेबी स्टेप लीजिए। आप में जो पहली दफा कुरान सुन रहे हैं, आप पहले अपने कपड़े ढीले कीजिए, छोटी कमीजों को लंबी कीजिए, छोटे बाजुओं को लंबा कीजिए, पतले दुपट्टों को मोटा कीजिए, औरतों में अपने ड्रेसेस को देखिए कि इसमें सतर खुल तो नहीं रहा, फिर उसके बाद घर के मर्दों में लीजिए, और अल्लाह किसी को तौफीक देता है वो हजरत मूसा के जादूगरों की तरह एक ही दम मान जाते हैं। ये दुआ करें कि सुन सुन के सुनना हो जाए। कुछ लोगों ने ठानी हुई है, क्योंकि उनके कुछ लोगों की दलीलें भी है ना, वो अरब लोग कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं, वो फलां आलिमा है, वो फलां भी तो बगैर पर्दे के आती हैं, तो कोई हुज्जत नहीं है मेरे आपके लिए। ये तो मैं आपको भी से बता सकती हूँ कि ये कोई नहीं कहता कि मेकअप करके खूबसूरत सा चमकी चमकी हिजाब पहन के शादियों में आओ, ये किसी इमाम का फतवा नहीं है, ये किसी अरब और अजमी का नहीं। धोबी दुला मुंह, तिब्बत स्नो भी ना लगी हो, पाउंड क्रीम भी ना लगी हो, मुंह पे सुरमा भी ना हो, अगर ऐसे हुलिये में शादियों में जाते हैं और ऐसा हो रहा है कि जिसमें देखकर आपको बहुत बड़ी खातून नहीं लग रही, तो जाइए, फिर अल्लाह ने आपके लिए शायद कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट रखा होगा। तो पहले पिछले स्टेप्स को पूरा करेंगे तो फिर आगे आएंगे इंशाल्लाह। तो आज ये दुआ कर लें कि अल्लाह मेरा दिल खोल दे। 2 साल अल्लाह ने प्रैक्टिस करवाई कोरोना पीरियड में मास्क की, अब तो वो हुज्जत भी खत्म हो गई उन मुल्कों में कि 50 यूरो का कौन जुर्माना दे। पेरिस में 80% अब मुसलमान औरतें बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग किस्म के मास्क के साथ पर्दा कर रही हैं, तो और अच्छा हो गया। ठीक है, तुम भी खुश तो हम भी खुश, समझ रहे हैं ना। तौफीक मांगिए, दलाइल ना मांगिए, आप सवाल ना करें, जवाब के ऊपर गौर करने की अल्लाह से हम दुआ करते हैं। तो क्या सीखा, घर से बाहर निकलते वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पर्दे का एहतमाम करना है, हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे नहीं पहुंचाना, किसी से मरूब होकर इसकी बेजा इताअत नहीं करनी। अल्लाह हमें कॉन्फिडेंस दे, वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम, इस पे फख्र कीजिए। एक औरत आधा जिस्म खोल के निकलती, उसको शर्म नहीं आती, तो आपको अपना ये जिस्म छुपा के जाने में क्यों शर्म आती है? असल में यहाँ प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस का है। और ये जो ब्लैक अबाया कल्चर मैंने 2 दिन पहले बताया, तो ये मैंने कॉन्फिडेंस बताया है। हाँ, मैं काला नहीं, मैं नीला पहन लूँ, पीला पहन लूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है इस पे कि मैं गलत काम नहीं कर रहा। बस अल्लाह से हम यही मांग लें। आगे रुकू नंबर 969 से 73, जुबान की हिफाजत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ऊ मूसा, पुकार है आपके नाम रब की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन लोगों जैसे ना बन जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी, पस जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने इन्हें इससे बरी फरमाया और अल्लाह के नजदीक वो बाइज्जत थे। फिर पुकार है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा, ये है मुझे है हुक्मे अज़ा, सीधी बात करो। तबलीग के दौरान बात को हेरी फेरी, ये भी ठीक तो वो भी ठीक, जिस पे आपका शरा सदर है आप वो बता दें, जिस पे जिसका दिल ठोके वो उस हुक्म को मान ले। क्या फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें किया करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा इसने बड़ी मुराद पा ली। हाईलाइट करें कनूत, ये चाहिए। निफाज़े शरीयत के लिए नारे स्लोगन्स दावे नहीं, कनूत कनूत कनूत। दुआ करिए अल्लाह हमें कानितात बना दे और हमारे मर्दों को कानितीन बना दे। अब आखिरी आयतें जरा सुनिए, सूरत किस बे खत्म हो रही है। हमने अपनी अमानत को आसमानों पर, जमीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसके उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया। वो बड़ा ही जालिम जाहिल है। ये इसलिए कि अल्लाह ताला मुनाफिक मर्दों औरतों और मुशरिक मर्दों औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों औरतों की तौबा कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। अमानत क्या है? जिम्मेदारी, कुरान, इताअत, बहुत सारी इसकी तफसीरें हैं। 3 आयतें ईमान से मुतल्लिक, 69 अहज़ाब, जुबान की हिफाजत करना जरूरी है। मूसा अलैहिस्सलाम पे बातें छांटी थी लोगों ने, उसी पे बुनियाद बना के ये बात कही गई। फिर 70 अहज़ाब, अल्फाज शख्सियत के आईना दार होते हैं, इसकी बहुत जरूरत है बेहतरी की। अल्हम्दुलिल्लाह सबीलुल जन्नाह कोर्स के बाद नूरुल अनूर कोर्स में, जो हमारे सीनियर कोर्स में शामिल है, जिसको हमने अभी भी अनाउंस कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 दिन का मुझे लगता है कोर्स है ये साल दोबारा, ये सीनियर्स के लिए होता है। जो एक दफा कुरान सीख चुके हैं वो नूरुल अनूर करें, उसका एक पूरा पोर्शन है कि इस जगह पे बैठने से पहले जरा बात करनी तो सीखो, चलना सिखाते, बैठना सिखाते, बोलना सीखते, और आपके अल्फाज तो ऐसे ही है ना कि जैसे दूसरे को आपका क्या तारुफ है। अक्सर तो हम लोगों के अल्फाज ही के जरिए उनको पहचान रहे होते हैं। फिर आगे आयत 73 में क्या है मैसेज, अच्छाई का बदला अच्छाई के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह हमें अच्छा बना दे। कूलू कौलन सदीदा, गुस्से में मुंह से निकले हुए अल्फाज इंसान की शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, इसलिए गुस्से में भी अल्फाज पे काबू रखिए। फेथ इन एक्शन, नबी की इताअत करनी है, नाफरमानी नहीं करनी, हमेशा साफ और सीधी बात करनी है। सूरत अलहज़ाब का आगाज क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार और मुनाफिकीन की बात मानने से रोक दिया, डायरेक्ट खिताब था। इख्तिताम पे क्या है? नबी को उनके इंजाम से आगाह कर दिया। यानी सूरतों के शुरू और आखिर में रब्त है, और बहुत ही मारूफ सूरत है सूरत अहज़ाब, मदनी सूरत है। इसके बाद अब आपको कई सूरतें बड़ी सॉफ्ट सी लगेंगी, क्योंकि उसमें अहकामात से ज्यादा अकायद की दुरुस्तगी की बात है।